संयुक्त राष्ट्र रेडियो से साप्ताहिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं हूं महबूब खान। 17 अगस्त 2018 के इस बुलेटिन में आप सुन सकेंगे, एशिया में मक्का और धान की फसलों पर एक खतरनाक कीड़े का प्रकोप, गंभीर चेतावनी जारी। सरकारों को नहीं बल्कि कमजोर लोगों को है मानवाधिकार सुरक्षा की जरूरत, कहा मानवाधिकार उच्चायुक्त ने। अफगानिस्तान में भीषण लड़ाई और आत्मघाती हमलों में सैकड़ों लोग हताहत, हिंसा की तीखी निंदा के साथ साथ सुलह सफाई करने की पुकार। कीड़े मारने वाले पेस्टिसाइड्स बनाने वाली कंपनी मॉन्सेंटो पर करोड़ों डॉलर का जुर्माना और बांग्लादेश में गिरफ्तार किए गए एक फोटो पत्रकार शाहिदुल आलम की रिहाई की मांग। आइए अब सुनते हैं समाचार विस्तार से। मक्का और धान की फसलों को व्यापक नुकसान पहुंचाने वाले एक कीड़े ने एशिया में किसानों और सरकारों की नींद उड़ा दी है। इस कीड़े का नाम है फॉल आर्मी वॉर्म और ये आमतौर पर दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। बहुत ही आक्रामक प्रकृति वाला ये कीड़ा फसलों को बड़ा नुकसान पहुंचाने में सक्षम है। संयुक्त राष्ट्रों के खाद्य और कृषि संगठन FAO ने एशियाई देशों, दक्षिण पूर्वी एशिया और दक्षिणी चीन के कुछ इलाकों में इस कीड़े का प्रकोप बहुत बड़े पैमाने पर होने की आशंका जताई है और साथ ही सावधानी बरतने की चेतावनी भी जारी की है। उड़ने की क्षमता वाले इस गिंडार नुमा कीड़े यानी कैटरपिलर ने इससे पहले 2016 में कहर बरपा किया था। हाल के समय में भारत में भी इसकी मौजूदगी के बारे में चेतावनी जारी की गई थी। फॉल आर्मी वॉर्म नामक इस कीड़े पर खाद्य और कृषि संगठन के प्रिंसिपल टेक्निकल कोऑर्डिनेटर यानी प्रधान तकनीकी संयोजक एलन हुर्स्का का कहना था,
So unlike other places in the world where a lot of the maize especially is used for animal feed, in Asia there's still a fairly high proportion of the rice that's directly consumed by humans.
एलन हुर्स्का कह रहे थे, ये समझने की बात है कि विश्व के अनेक हिस्सों में मक्का की फसल पशुओं को खिलाने के काम में लाई जाती है, मगर एशियाई देशों में मक्का और चावल का बड़ा हिस्सा इंसानों के खाने के काम आता है। खतरे की बात यह है कि फॉल आर्मी वॉर्म नामक ये गिंडार नुमा कीड़ा इन फसलों को 10-20% तक नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन इसका प्रकोप यहीं नहीं रुकता। ये कीड़ा अगर अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करे तो फसल को 40% तक बर्बाद कर सकता है। और भी ज्यादा चिंता की बात है कि उड़ने की क्षमता की वजह से इससे होने वाले नुकसान का दायरा बहुत बड़े इलाके में फैल सकता है। खाद्य और कृषि संगठन के प्रिंसिपल टेक्निकल कोऑर्डिनेटर एलन हुर्स्का के शब्द। ये भी गौर करने की बात है कि ये कीड़ा चावल और मक्का की फसलों के अलावा 80 अन्य फसलों को भी खाता है और उन्हें भारी नुकसान पहुंचा सकता है। ये कीड़ा एक रात में करीब 100 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। इस कीड़े की मादा अपने पूरे जीवन में 1000 अंडे देने की क्षमता रखती है, जिससे इसकी नस्ल भी तेजी से फैलती है। खाद्य और कृषि संगठन ने इस कीड़े की चुनौती का सामना करने के लिए प्रभावित देशों की सरकारों को सक्रिय तकनीकी सहायता देने की पेशकश की है। इसमें किसानों को भी कई तरह की मदद देने की पेशकश है, जिसमें समय रहते इसका पता लगाने और चेतावनी जारी करने और इसे मारने के लिए सुरक्षित रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल करने के बारे में उपयुक्त जानकारी मुहैया कराना शामिल है। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार उच्चायुक्त जायद रआद अल हुसैन ने कहा है कि तमाम देशों की सरकारों और राज्य मशीनरी ने खुद की हिफाजत करने के लिए पर्याप्त सत्ता इकट्ठी कर रखी है, लेकिन आम नागरिकों को राज्य और सरकार के मुकाबले अपने मानवाधिकारों की हिफाजत करने के लिए मदद की व्यापक जरूरत है, जिसके लिए संयुक्त राष्ट्र और अन्य संगठनों की मानवाधिकार सहायता एजेंसियों के कार्य बहुत महत्वपूर्ण हैं। जायद रआद अल हुसैन इस पद पर 4 साल तक काम करने के बाद 31 अगस्त को रिटायर हो रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार उच्चायुक्त पद पर काम करने वाले वो ऐसे पहले व्यक्ति रहे हैं जो एशियाई, अरब और मुस्लिम पृष्ठभूमि से हैं। इन 4 वर्षों के दौरान उन्होंने पूरी दुनिया में कमजोर और सताए हुए लोगों की हिफाजत करने के लिए अथक काम किया है। इस मुहिम के दौरान उन्होंने चौंकाने वाले तथ्य सामने लाए हैं, साथ ही सरकारों और अन्य गुटों या लोगों द्वारा किए जा रहे मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों को भी उजागर करने में सक्रिय भूमिका निभाई है। जायद रआद अल हुसैन ने 31 अगस्त को रिटायर होने से पहले संयुक्त राष्ट्र रेडियो के साथ खास और विस्तृत बातचीत में अपने अनुभव बांटे हैं।
The Human Rights Office and the Human Rights High Commission, I mean, you're part of the UN. but you're also part of a human rights movement. And both are equally important. And as I've said on earlier occasions, I mean, the governments are more than capable of defending themselves. It's not my job to defend them. I have to defend.
Zaid Raad Al Hussein कह रहे थे, ये तो हम सभी जानते हैं कि मानवाधिकार कार्यालय और मानवाधिकार उच्चायोग संयुक्त राष्ट्र की संस्थाएं हैं, मगर साथ ही ये भी समझने की बात है कि ये संस्थाएं विशेष रूप से मानवाधिकार संरक्षण के लिए समर्पित हैं। जैसा कि मैं पहले भी अनेक अवसरों पर कह चुका हूं कि देशों की सरकारें खुद की हिफाजत करने में जरूरत से ज्यादा सक्षम हैं, यानी सरकारों ने खुद में बहुत सारी सत्ता केंद्रित कर रखी है। सरकारों की हिफाजत करना मेरा काम या जिम्मेदारी नहीं है। मेरी जिम्मेदारी और कर्तव्य सिविल सोसाइटी और कमजोर समूहों और ऐसे लोगों की हिफाजत करना है जो दबे कुचले हैं, जिनका दमन किया जाता है, जिनके वजूद की न सिर्फ अनदेखी की जाती है बल्कि उनके वजूद को नकारने की कोशिश की जाती है। ये वो लोग और समूह हैं जिनकी आवाज बनना संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार एजेंसियों और अन्य मानवाधिकार संगठनों की जिम्मेदारी है। मैंने इस पद पर रहते हुए भी हमेशा यही सोचा और उसके लिए काम किया है कि यही हमारी सबसे प्रमुख जिम्मेदारी और काम है। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार उच्चायुक्त जायद राद अल हुसैन के शब्द। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस पद पर अच्छा काम करने के लिए असली दबाव और जरूरत उन लोगों की तरफ से आई जो लोग मानवाधिकार उल्लंघन का शिकार होते हैं और जिन्हें तरह तरह की तकलीफों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने ध्यान दिलाते हुए कहा कि मौजूदा दौर में चुनौतियां कम होने के बजाय और बढ़ रही हैं, क्योंकि दुनिया के अनेक हिस्सों में इंसानों का दमन और उनके साथ ज्यादतियों की बुराइयां फिर से मुंह उठा रही हैं। अगर आप जायद राद अल हुसैन का पूरा इंटरव्यू सुनना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट news.un.org पर सुन सकते हैं, जहां द लीड इज ऑन के ताजे संस्करण में उनका इंटरव्यू मौजूद है। जायद राद अल हुसैन के 31 अगस्त को रिटायर होने के बाद मिशेल बैशलेट संयुक्त राष्ट्र की नई मानवाधिकार उच्चायुक्त होंगी। मिशेल बैशलेट चिली की पूर्व राष्ट्रपति और संयुक्त राष्ट्र के महिला संगठन यूएन वुमेन की अध्यक्ष हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंटोनियो गुटेरेस ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक शिक्षा केंद्र पर हुए भीषण आत्मघाती हमले की तीखी भर्त्सना करते हुए इस हमले के जिम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे में लाने की पुकार लगाई है। इस हमले में 50 से ज्यादा लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर किशोर उम्र के वो छात्र थे जो विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। महासचिव ने अपने प्रवक्ता के माध्यम से एक वक्तव्य जारी करके इस हमले की कड़े से कड़े शब्दों में निंदा की है। वक्तव्य में कहा गया है कि निर्दोष बच्चों और छात्रों को इस तरह से हमलों का शिकार बनाना कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, इसलिए इस तरह के हमलों के लिए जिम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे में अवश्य लाया जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भी इस हमले की तीखी भर्त्सना की है और महासचिव की आवाज से आवाज मिलाते हुए इस हमले में हताहतों और प्रभावित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। सुरक्षा परिषद ने इसे एक कायरतापूर्ण तरीके से किया गया आतंकवादी हमला करार दिया। सुरक्षा परिषद में मौजूद 15 राजदूतों ने स्पष्ट और कड़े शब्दों में कहा कि इस तरह के आतंकवादी हमले बिल्कुल आपराधिक कृत्य हैं और इन्हें किसी भी आधार पर जायज नहीं ठहराया जा सकता, भले ही इसकी कोई भी दलील क्यों ना दी जाए। इस बीच महासचिव ने गजनी शहर में रक्त रंजित लड़ाई को देखते हुए तमाम युद्धरत पक्षों के बीच सुलह सफाई और शांति कायम करने की पुकार लगाई है। गौरतलब है कि तालिबान ने शुक्रवार 10 अगस्त को गजनी में हमले शुरू किए थे, जिसके बाद सरकारी सेनाओं और तालिबान के बीच भीषण लड़ाई हुई। गजनी शहर राजधानी काबुल से दक्षिण पश्चिमी इलाके में स्थित है। मीडिया खबरों में कहा गया है कि सप्ताह भर की इस लड़ाई में लगभग 400 लोगों की मौत हो चुकी है, इनमें से करीब 1/4 आम नागरिक हैं। महासचिव अंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि किसी भी गतिविधि में आम नागरिकों और नागरिक ठिकानों को हमलों का निशाना बनाना अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों का खुला उल्लंघन है। उन्होंने तुरंत टिकाऊ युद्ध विराम लागू किए जाने पर जोर देते हुए कहा कि दोनों पक्षों को टिकाऊ शांति कायम करने के लिए बातचीत के जरिए कोई हल निकालने की पहल करनी होगी। उधर अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के मुखिया तादामीची यामामोतो ने भी बुधवार को एक वक्तव्य जारी करके लड़ाई खत्म करने और टिकाऊ शांति कायम करने के लिए बातचीत शुरू करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि गजनी में सप्ताह भर की भीषण लड़ाई के बाद खाने पीने की चीजों की कमी हो गई है, पानी की भी भारी किल्लत है, बिजली आपूर्ति बुरी तरह बाधित हुई है और संचार साधन ठप हो गए हैं। अमरीकी राज्य सैन फ्रांसिस्को में कैलिफोर्निया की एक अदालत के उस फैसले का जोरदार स्वागत किया गया है जिसमें कीड़ों को मारने वाले खतरनाक रासायनिक पदार्थों यानी पेस्टिसाइड्स बनाने वाली एक विशाल काय कंपनी मोनसेंटो पर करीब 28 करोड़ 90 लाख डॉलर का जुर्माना लगाया गया है। ये जुर्माना मिस्टर डेवेन जॉनसन नामक एक व्यक्ति द्वारा दायर किए गए मुकदमे पर फैसला सुनाते हुए लगाया गया है। इस मुकदमे में मिस्टर जॉनसन ने कहा था कि मोनसेंटो कंपनी के रासायनिक पदार्थों यानी पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करने से उन्हें कैंसर हुआ जिसने उनकी जिंदगी खतरनाक तरीके से प्रभावित किए है। मिस्टर जॉनसन एक स्कूल में ग्राउंड कीपर यानी माली के तौर पर काम करते थे और बागीचों और घास की देखभाल करते हुए उनमें कीड़े वगैरह पैदा होने से रोकने के लिए जो रासायनिक पदार्थ यानी पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल करते थे वो मोनसेंटो कंपनी के बनाए हुए थे। इन पेस्टिसाइड्स का नाम था राउंडअप और रेंजर प्रो। अब मिस्टर जॉनसन की उम्र 46 वर्ष है और 4 वर्ष पहले उन्होंने मोनसेंटो कंपनी पर यह मुकदमा दर्ज किया था कि उसके पदार्थों के नियमित इस्तेमाल की वजह से ही उन्हें कैंसर की बीमारी हुई। डॉक्टरों ने उनकी चिकित्सा स्थिति के आकलन के बाद कहा है कि मिस्टर जॉनसन शायद 2020 से आगे जीवित न रह पाएं। सुपीरियर कोर्ट ऑफ कैलिफोर्निया ने 10 अगस्त को सुनाए अपने निर्णय में मोनसेंटो कंपनी को आदेश दिया कि वो मिस्टर जॉनसन को 3 करोड़ 90 लाख डॉलर का मुआवजा दे। साथ ही इस अदालत ने मोनसेंटो कंपनी को 25 करोड़ डॉलर का हर्जाना भी भरने का आदेश दिया है। संयुक्त राष्ट्र के 2 वरिष्ठ मानवाधिकार पदाधिकारियों ने अदालत के इस फैसले का जोरदार स्वागत किया है। इन मानवाधिकार विशेषज्ञों का कहना है कि कैलिफोर्निया की अदालत का यह आदेश विश्व स्वास्थ्य संगठन के उस परीक्षण की पुष्टि करता है जिसमें साल 2015 में संगठन ने कहा था कि मोनसेंटो कंपनी के पेस्टिसाइड्स में इस्तेमाल होने वाला एक रासायनिक पदार्थ ग्लाइफोसेट इंसानों में कैंसर की बीमारी फैलाने में सक्षम हो सकता है। स्पेशल रिपोर्टर ऑन द राइट टू फूड यानी भोजन के अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र की विशेष दूत हिलाल एल्वेर का कहना था कि रोजमर्रा के जीवन में रासायनिक पदार्थों के जरूरत से ज्यादा और असुरक्षित इस्तेमाल से बहुत सारी मुश्किलें पैदा होती हैं। इनसे आम लोगों की जिंदगी बहुत बड़े पैमाने पर प्रभावित होती है जिससे उन्हें भोजन पानी की किल्लत तो होती ही है, उनके स्वास्थ्य को गंभीर खतरे पैदा होते हैं और व्यापक रूप में पूरे पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचता है। इन मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने खेद व्यक्त करते हुए कहा है कि अदालत का यह फैसला शायद बहुत देर से आया है क्योंकि मिस्टर जॉनसन का कैंसर इस अवस्था में पहुंच गया है कि वो अब ज्यादा समय तक जीवित न रह पाएं। ऐसे में धन के रूप में दिया जाने वाला मुआवजा या हर्जाना उनके जीवन का कोई विकल्प नहीं हो सकता। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि मोनसेंटो कंपनी के अंदरूनी दस्तावेजों से यह साफ पता चलता है कि कंपनी को अपने पदार्थों से कैंसर होने की संभावनाओं के बारे में कई दशकों से जानकारी थी। मोनसेंटो कंपनी ने अदालत के इस फैसले के खिलाफ अपील करने का इरादा जाहिर किया है। संयुक्त राष्ट्र के 3 मानवाधिकार विशेषज्ञों ने बांग्लादेश में अधिकारियों से शाहिदुल आलम नामक उस फोटोग्राफर को रिहा करने का आग्रह किया है जिसे गिरफ्तार करके प्रताड़ित करने की खबरें आई हैं। खबरों के अनुसार फोटोग्राफर शाहिदुल आलम ने प्रदर्शनों में भाग लेने वाले छात्रों को प्रताड़ित करने के बारे में रिपोर्टिंग की थी और तस्वीरें खींची थीं। एक समाचार संगठन ने प्रदर्शनकारियों के बारे में 5 अगस्त को उनका इंटरव्यू जारी किया था। उसके कुछ ही घंटों के भीतर शाहिदुल आलम को राजधानी ढाका में उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया था। अगले दिन शाहिदुल आलम को एक अदालत में पेश किया गया। मानवाधिकार विशेषज्ञों का कहना है कि उन्हें प्रताड़ित किए जाने के निशान देखे गए जिसके बाद उनकी सुरक्षा के लिए चिंता व्यक्त की गई। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार विशेषज्ञों का कहना है कि इस फोटो जर्नलिस्ट शाहिदुल आलम की गिरफ्तारी और उनके साथ प्रताड़ना के अलावा बहुत से छात्रों, पत्रकारों और अन्य लोगों को भी निशाना बनाया गया है जो बांग्लादेश में सरकारी सेवाओं में सुधार और बेहतर न्याय व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। मानवाधिकार विशेषज्ञों ने बांग्लादेश के अधिकारियों से फोटो पत्रकार शाहिदुल आलम की तुरंत रिहाई की मांग करते हुए उन्हें प्रताड़ित किए जाने के आरोपों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। तो ये था साप्ताहिक समाचार बुलेटिन संयुक्त राष्ट्र रेडियो से। अब महबूब खान को इजाजत दीजिए।